کتاب چراغ آسمان سے ایک اور عالم دین علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات زندگی پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اسم گرامی محمد بن نعام بن عبد السلام الحارثی اور لقب مفید تھا۔ شیخ و فاضل، متکم وحید اور مناظر فرید، یہی وہ بزرگ ہستی ہے کہ ان کے لیے 3 سال کے عرصے میں 3 مرتبہ ناحیہ مقدس حضرت حجت سے 3 توقیف شریف برآمد ہوئے۔ ان کے مرتبہ عالیہ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک دیہاتی شیخ مفید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک حاملہ عورت فوت ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، کیا حکم ہوتا ہے؟ آیا شکم چاک کر کے بچہ باہر نکال لیں یا اسی حمل کے ساتھ عورت کو دفن کر دیں؟ شیخ مفید نے فرمایا کہ اس کو حمل کے ساتھ دفن کر دو۔ یہ سن کر وہ شخص واپس ہوا، اثنائے راہ ایک سوار اس کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور کہا کہ شیخ نے فرمایا ہے کہ میت کا شکم چاک کر کے بچہ برآمد کر لیا جائے اور میت دفن کر دی جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ واقعہ شیخ کے سامنے نقل کیا گیا۔ شیخ نے فرمایا، میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ حضرت صاحب العصر و زماں ہیں، آپ نے میری لاج رکھ لی۔ چونکہ احکام شرعی میں خطا واقع ہوئی تھی، لہٰذا یہ طے کر لیا کہ آئندہ فتویٰ دینے سے اجتناب کریں گے۔ چنانچہ آپ نے در خانہ بند کر دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ناگاہ حضرت ولی عصر سے توقیع مبارک شیخ مفید کے نام برآمد ہوئی کہ تم فتویٰ دو، یہ کام تمہارا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہارے فیصلوں کی نگہداری کریں تاکہ خطا واقع نہ ہو۔ اس حکم کے بعد شیخ دوبارہ مسند فتویٰ تشریف فرما ہوئے اور اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیخ مفید کا درجہ کس قدر بلند تھا اور امام عصر علیہ السلام کے نزدیک آپ کی کیا وقعت تھی۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ یہی شیخ مفید یا ان جیسے دیگر جلیل القدر علماء ہی پر منحصر نہیں کہ فیصلے میں سہو واقع ہو، بلکہ حضرت داؤد جیسے عظیم المرتبت پیغمبر جو صاحب کتاب زبور بھی تھے، ایک فیصلے میں آپ سے سہو واقع ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ صعد کی آیت 21-24 میں کیا گیا ہے، حالانکہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے ان کو حکمت اور بحث کے فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ پیغمبر کو عطائے باری کے مقابل علماء و فقہا کا درجہ کمال علم پر فائز ہونا اور اپنے نفس خودسی کا پیدا کرنا ان کی اپنی ذاتی محنت و شاخے و جہد مسلسل کا نتیجہ ہے، جس کے بعد توفیقات الہی شامل حال ہوا کرتی ہے۔ تفصیل واقعہ جو مذکورہ آیت میں موجود ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے روزمرہ کے معلومات کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک دن خالص عبادت الہی کے لیے، ایک دن مقدمات کے فیصلوں کے لیے، ایک دن ذاتی مصروفیات کے لیے اور ایک دن بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے۔ حضرت داؤد کے سامنے جب کبھی فرشتے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے تو بڑے ادب، تعظیم اور القاب و آداب کے ساتھ۔ حضرت داؤد نے جب سبب پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ خداوند عالم نے بڑی بڑی بلاؤں سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، اسی وجہ سے خدا نے ان کو یہ عزت دی۔ اس پر حضرت داؤد کے دل میں بھی امتحان کی تمنا پیدا ہوئی تاکہ اونچے درجوں پر فائز ہوں۔ پس خدا نے آپ کے اپنے مقرر کردہ عبادات کے روز، جبکہ آپ مکان کے تمام دروازے بند کر کے کوٹھے پہ مصروف عبادت تھے، انسان کی شکل میں 2 فرشتے کھڑکی کی راہ بھیج دیے۔ حضرت داؤد ان دونوں کو دیکھ کر ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں۔ پھر اپنا مقدمہ یوں پیش کیا۔ روداد یہ تھی کہ دونوں آپس میں بھائی تھے، ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور دوسرے کے پاس صرف 1 دمبی تھی۔ شکایت یہ تھی کہ وہ 1 دمبی بھی طلب کر رہا ہے اور بات چیت میں سختی سے پیش آتا ہے۔ حضرت داؤد نے بغیر اس کے کہ مدعی عالیہ کا بیان سنتے اور مدعی سے گواہ طلب کرتے، فوراً ہی فیصلہ دے دیا کہ جو بھائی 1 دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں میں ملا لینا چاہتا ہے، یہ اس کا سراسر ظلم ہے۔ ये फैसला सुनकर दोनों गायब हो गए। अब हज़रत दाऊद को एहसास हुआ कि उन्होंने फ़ैसले में गलती की और इम्तिहान में नाकाम रहे, लिहाजा इस सदमे से 40 रोज़ तक दिन और रात गिरिया और जारी करते रहे, सिवाय नमाज के सजदे से सर न उठाते। इतना रोए कि ज़मीन आंसुओं से तर हो गई और घास उग आई। तब जाकर खुदा ने माफ़ किया। खुदा की कसम, ये सिर्फ़ मासूमीन अलैहिस्सलाम ही हैं जो रासुखान फी इल्म के मुज़दाक़ हैं और हर किस्म के रिड्स और ऐब से पाक हैं और इल्म लदनी और इल्म हुजूरी के हामिल हैं, ख़ता व निसियान से दूर हैं। इनका लुत्फ़ करम उलमाए आलाम के शामिल हाल होता है, जिसके बेशुमार शवाहिद कुतुब में दर्ज है, खुसूसन ज़मान ग़ैबत कुबरा में शेख मुफीद के लिए और शेख असदुल्ला काज़िमी के लिए जितनी तौखियात शरीफ़ा बरामद हुई हैं और उलमाए इमामिया का इस पर इजमा है कि जितनी तौखियात शेख मुफीद के नाम नाहिया मुक़दस से बरामद हुई वो सब के सब ख़त मुबारक इमाम ज़माना से थी। यानी नवाबीन के दौर की तेरे ना थी कि इमाम अलैहिस्सलाम जवाबात इरशाद फरमाए और उन्होंने लिख कर साहिल तक पहुँचा दिया हो, बल्कि सिर्फ़ बख़त हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम थी। हज़रत इमाम असर अजल्लाह फ़रजहू के क़लम मुबारक से जो तौफीक़ात बरामद हुई थी वो काफ़ी थी। एक मरतबा शेख मुफीद ने ख़्वाब में देखा कि वह मस्जिद करख बगदाद में बैठे हैं और सिद्दीक़ा ताहरा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई, इस तरह के अपने दोनों साहबजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन के हाथ थामे हुए थी और शेख मुफीद से फरमाया, शेख इन्हें अपनी शागिर्दी में लो। शेख ख्वाब से चौंक पड़े और कमाल हैरत और इस्तेजाब में गर्क थे कि खुदाया क्या ख्वाब है, मेरी क्या मजाल के इन ज़वात मुक़दसा को तालीम दूँ जो खुद मंबे मरकज़ इल्म हैं। शब बड़ी बेचैनी व तरद्दुद के आलम में गुजारी, सुबह हसबे मामूल मस्जिद करख गए, बाद नमाज व तहक़ीबात इसी जगह बैठ गए जहाँ आलम ख्वाब में बैठे थे। क्या देखते हैं कि एक मौज़मा कनीज़ों के हलक़े में मस्जिद में दाखिल हुई, इस तरह के दो लड़कों के हाथ थामे हुई थी, कहा कि शेख इन्हें अपनी शागिर्दी में लो। शेख को ख्वाब की ताबीर मिल गई, फौरन ताज़ीमन अपनी जगह से उठ खड़े हुए और इन मौज़मा को सलाम किया। इस आने वाली बीबी का नाम फ़ातिमा था, जो अपने दोनों फर्जंदों सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी को हमरा लाई थी। शेख का ये आलम था कि एक मुद्दत तक इन साहबजादों से कमाल शफ़क़त और अदब और एहतराम से पेश आते रहे, क्योंकि ये जान गए कि ये दोनों अजूबा रोज़गार साबित होंगे। एक मरतबा सैयद मुर्तज़ा ने कहा कि ज़ीन इनके घोड़े पर कस दी जाए। शेख मुफीद ने मना किया कि कुत्ते ने इस पर पेशाब किया है और मैंने बचश्मे ख़ुद इसे देखा है। सैयद मुर्तज़ा ने कहा, आपकी एक गवाही शरण काफ़ी नहीं, इसलिए आपका कौल मसमू नहीं है। मुबाहसे के बाद यह करार पाया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इस मसले में रुजू किया जाए। चुनाचे दोनों अपने अपने दलायल लिखकर ज़रिए मुताहरे अमीरुल मोमिनीन पर रख दिया। सुबह को देखा कि बख़त सब्ज़ मौलाए कायनात ने तहरीर फरमाया, अलहक मा वलदी वल शेख मोतमदी। इस जवाब को पाकर सैयद मुर्तज़ा ने 1,000 दिरहम फ़ुरा व मसाकीन में तकसीम किए और नमाज शुक्राना अदा की। इन वाक़यात को सैयद मुर्तज़ा ने खुद और अल्लामा मजलिसी व शेख तबरी ने नक़ल किया है। आपका इल्म व फ़ज़ल व फ़ुका अदालत मौफ़िक़ व मुखालिफ सब के नज़दीक मुसल्लम थी। हदीस व फ़िका कलाम में अपना जवाब नहीं रखते थे। उलमाए अहले सुन्नत ने आपकी तारीफ़ हज़ ज़ैल अल्फाज में की है। ये शियों के शेखुल मशायख रईस कलाम व फ़िका व मनाजरा थे, हर मज़हब और मिल्लत वालों से मनाजरा करते थे, बहुत खैरात देने वाले, बहुत खुशू करने वाले, कसीरु सलात व सौम थे, लिबास मामूली पहनते, बूढ़े सब्ज़ा रंग लागर अंदाम थे। 67 साल ज़िंदगी पाई, आपकी तसानीफ़ की तदाद 200 से ज़्यादा है। आपके जनाजे में 70,000 अफराद ने शिरकत की। अपने वक्त के बड़े जाहिदों में आपका शुमार होता था और हर वक्त इल्म की तरफ मुतवज्जह रहते थे। कहा जाता है कि कोई शिया इमामी ऐसा नहीं है जिस पर इनका एहसान ना हो। शरीफ अबू अला जाफर जो शेख मुफीद के दामाद थे बयान करते हैं कि शेख मुफीद रात को ज़रा सी देर के लिए पलक झपकाते, इसके बाद सारी रात नमाज या मुतायला या तिलावत कुरान में बसर कर देते। 3 रमज़ानुल मुबारक को शब जुमा इंतकाल फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा सुन्नी और शिया ने आपके जनाजे में शिरकत की। अल्लामा सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा ने आपकी नमाज जनाजा मैदान असनान बगदाद में अदा की। शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस कदर गिरिया व बुका मुफीद की वफात के रोज़ हुआ, ऐसा फिर कभी नहीं देखा गया। आपके जनाजे पर हर मुआफ़िक़ और मुखालिफ गिरिया कर रहा था। पहले घर में दफन किए गए, चंद साल बाद इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के पाईने पाक की जानिब दफन हुए, जहाँ सुद्दुख अबुल खासिम जाफर बिन हुलिया मदफून है। किताब मजालिसुल मोमिनीन और दीगर किताबों में मजकूर है कि हसब जैल चंद अशार बख़त हज़रत हुज्जत असर शेख मुफीद के खबर मुबारक पर लिखे हुए पाए गए, गोया वली असर ने इन पर मरसिया फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है: आपके इस दुनिया से मफ़ूद हो जाने पर रोने वालों को रोना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज का दिन आले रसूल के लिए मसाहिब उज़मा का दिन है। अगरचे के आप कब्र में दफन हो चुके हैं और लोगों की नज़रों से पोशीदा हैं, लेकिन अदले इलाही और तौहीद का बयान आपकी वजह से कायम है। मुझे खुशी होगी जब भी उलूम का दर्स लोग हासिल करेंगे। किताब चिराग आसमां से एक और आलिम दीन अल्लामा सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा के मुख्तसर से हालात ज़िंदगी पेश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इस्मे ग्रामी अबुल खासिम अली बिन हुसैन मुर्तज़ा और लक़ब इल्मुल हुदा है। आपका सने विलादत सन 355 हिजरी है और आपका सिलसिला नसब सिर्फ 5 वास्तों से इमाम मूसे काज़िम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था और हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा के हुक्म पर फ़ातिमा के दोनों साहबजादों सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी को शेख मुफीद ने अपना शागिर्द बनाया। इस वाक़े की सारी तफसीलात शेख मुफीद के हालात में दर्ज कर दी गई हैं। सैयद मुर्तज़ा को इज्तिहाद का इजाज़ा शेख मुफीद और हुसैन इब्ने अली इब्ने बाबूया ने दिया था, जो शेख सुद्दुख के भाई थे। ये वो अजीम आलिम थे कि आपकी विलादत इमाम असर अलैहिस्सलाम की दुआ खैर से हुई थी। शेखुल लताइफा अबू जाफर तूसी और जनाब वर्राज को सैयद मुर्तज़ा ने शर्फ़ तलम्मुद हासिल था। आप जनाब तूसी को 12 तूमान और जनाब दर्राज को 8 तूमान रोज़मर्रा के अखराजात के लिए हर माह दिया करते थे। खुदावंद आलम ने आपको दौलत इल्म के साथ दौलत दुनिया भी दी थी। कहा जाता है कि मक्के के सफ़र के दौरान आपने अपने भाई सैयद रज़ी को 9,000 तूमान दिए थे। आपकी जायदाद बगदाद से मक्के तक 80 खरियों पर मुश्तमिल थी। आपके दौर में अहले सुन्नत वल जमात के मकतब फ़िक्र में बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया था। लोग मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में तकसीम हो चुके थे और हर शख्स मजहबी मालूमात में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करना चाहता था। नतीजा मुश्तरका तौर पर फ़ैसला किया गया कि सुन्नत वल जमात फ़िरक़े को 4 फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया जाए। उस वक्त सैयद मुर्तज़ा ने शिया फरीक़े को 5वें फ़िरक़े की हैसियत से तस्लीम करने का मुतालबा किया। एक जाफरी शिया, 2 शाफई, 30 हम्बली, 4 मालिकी और 5वां हनफी। आपका मंशा यही था कि शिया सुन्नी सारे इख्तलाफात को नज़रअंदाज करते हुए शिया फ़िरक़े को 5वें फ़िरक़ा मान लिया जाए। सुल्तान ने कहा, हम 5वां फ़िरक़ा भी तस्लीम कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप 2 लाख तोमान अदा करें। सैयद मुर्तज़ा ने कहा, मैं आपको 1 लाख तोमान दे सकता हूँ, लेकिन सुल्तान राज़ी ना हुआ। शियों के पास या तो इस कदर दौलत न थी या वह यह रकम देने के लिए तैयार न थे। बहरहाल सैयद मुर्तज़ा की तहरीक आगे न बढ़ सकी। सैयद मुर्तज़ा के लिए बड़े दुख का मकाम था कि लोगों ने अहम मजहबी मकसद की तकमील के लिए ना ही अतिया दिया और ना उनको जुम्बिश हुई। हमें आयद माजी के शियों के रवैये पर ताजुब न करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं
जो सरमाया दार है लेकिन फलाही कौमों में दिल खोल कर हिस्सा नहीं लेते। अगर आज सारे मालदार मुश्तरका तौर पर अफराद कौम की भलाई के लिए फलाही इदारों की सरपरस्ती करें और इनसे माली ताउन करें तो गैर महदूद तौर पर तरक्की की नई राहें हमवार हो सकती हैं। इसके अलावा मज़हब जाफरी को फ़रोग हासिल हो सकता है। इन सरमायादारों को चाहिए कि मस्जिदों और मदरसों की तामीर करें और अफराद मिल्लत के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करें। इल्मुल हुदा का लक़ब खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अता करदा है। वाक़िया यूँ है कि एक मरतबा वज़ीर अबू सईद सख्त अलील हो गया। इसने ख्वाब में देखा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और आप फरमा रहे हैं इल्मुल हुदा से कहो कि वह तुम पर दम करें। वज़ीर ने पूछा इल्मुल हुदा कौन है? आपने इरशाद फरमाया अली बिन हुसैन मूसवी। अबू सईद रोइया सादिखा से बेदार हुए और इसने सैयद मुर्तज़ा को ख़त लिखा। जवाबन आपने तहरीर फरमाया कि मैं इस लक़ब के काबिल नहीं हूँ। जब यह ख़बर खलीफा खादिर बिल्लाह को मालूम हुई तो उसने ख़त लिखा कि लक़ब आपके जद ने आपको अता फरमाया है, इसे कबूल कर लो। एक मरतबा आप तलबा को दर्स दे रहे थे, दौरान दर्स शेख मुफीद तशरीफ़ ले आए। आपने दर्स रोक दिया और अपने उस्ताद से कहा कि आप इस दर्स को तकमील तक पहुँचाएँ। शेख मुफीद ने कहा नहीं, तुम अपने दर्स को जारी रखो, मैं तुमको सुनना चाहता हूँ। शेख मुफीद ने सैयद मुर्तज़ा के दर्स की बेहद तारीफ़ की जबकि वह खुद हज़ारों खुतबात दे चुके थे। सैयद मुर्तज़ा कदीम बगदाद में रहा करते थे और आपका एक शागिर्द नए बगदाद में रहा करता था। सैयद मुर्तज़ा का यह शागिर्द सैयद इब्राहिम से भी दर्स लिया करता था। इस ज़माने में नए और पुराने बगदाद के दरमियान एक नदी थी। वो नदी के पुल पर से गुजर कर सैयद मुर्तज़ा के पास आता था और ये पुल शब को निकाल दिया जाता था और सुबह को दोबारा लगा दिया जाता। इस शागिर्द को पुल के लगा ले जाने तक इंतज़ार करना पड़ता। जिस वक्त वह सैयद मुर्तज़ा के पास पहुंचता, दर्स खरीबुल ख़त्म होता। वो सिर्फ चंद जुमले ही सुन सकता। इस शागिर्द ने सैयद मुर्तज़ा से दरख्वास्त की कि आप थोड़ी ताखिर से दर्स शुरू करें ताकि वह भी इस्तफादा कर सके। इस ताखिर से दर्स में शिरकत की वजह भी बतला दी। यह सुनकर सैयद मुर्तज़ा ने एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखकर अपने शागिर्द को दिया और फरमाया इस कागज़ को तुम अपने साथ रखो, लेकिन इसको पढ़ने का ख्याल कभी दिल में ना लाना। जब तुम यहाँ आना चाहो और पुल तैयार ना हो तो पानी पर चलना शुरू कर दो, तुम डूबने ना पाओगे और बआसानी पुल के सहारे के बग़ैर दरिया पार कर लोगे। इस दिन के बाद आपका यह शागिर्द बआसानी दरिया पार करने लगा। वो पानी पर बग़ैर जूतों के चलता था, इसके सिर्फ पैर भीगते थे। कुछ दिनों बाद इसने ये मालूम करना चाहा कि आखिर सैयद मुर्तज़ा ने इस कागज़ पर लिखा क्या है। कागज़ खोला, इस पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। फिर इस कागज़ को तह कर दिया, दूसरे दिन पानी पर कदम रखा था कि डूबने लगा, आगे न बढ़ सका। एक दफ़ा क़हत पड़ गया और एक यहूदी सैयद मुर्तज़ा के पास आया और मारूज़ा किया कि आप मुझे हर माह खराजात के लिए कुछ रकम दें और फिरासतुल्लैद हाथ की लकीरों का इल्म सिखाएं। आपने बखुशी रजामंदी का इज़हार किया और रोज़ के खराजात के लिए माहाना कुछ रकम मुकर्रर कर दी। चंद दिन बाद ये यहूदी आपकी दोस्ती और हुस्ने सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। एक सैयद मुर्तज़ा ने एक गांव गरीब गुरबा के लिए मुख्तस कर दिया था। एक मरतबा का जिक्र है कि एक दुर्वेश जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मद्दा था, ख़बर मुताहिर पे आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी ख़बर अक़दस पर बहुत खूबसूरत खंदीले मौजूद हैं जो सोने और चांदी की बनी है। आपको इन खंदीलों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक खंदील मुझे दे दें तो मैं अपनी बखिया ज़िंदगी आपके करम से आराम व मसरत के साथ गुजार सकूँगा। मौला मुत्तकियान की सखावत देखिए। इसी लम्हे एक खंदील टूट कर फर्श पर गिरी। इस दुर्वेश की दुआ कबूल हो गई, लेकिन जैसे ही वह खंदील उठाने के लिए आगे बढ़ा, हरम के खुद्दामों ने उठा लिया और इस खंदील को इस मकाम पर आवेज़ा कर दिया। दूसरे दिन इसी दुर्वेश ने फिर एक बार खंदील के लिए मारूज़ा किया। दूसरी मरतबा भी खंदील फर्श पर गिर पड़ी। पहले दिन की तरह खादिमों ने इस खंदील को अपने कब्ज़े में ले लिया और आवेज़ा कर दिया। तीसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। इस वक्त हरम अतहर में सैयद मुर्तज़ा मौजूद थे। खुद्दामों ने پچھلی رودا سنا کر آپ سے دریافت کیا کہ کیا اس قندیل کو پھر ایک بار آویزاں کر دیا جائے؟ آپ نے کہا بہتر ہوگا اس قندیل کو اس کے مقام پر لٹکا دیا جائے۔ اسی شب آپ نے عالم رویہ میں دیکھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر مذہب میں کچھ دیوانے ہوتے ہیں، یہ درویش آل محمد کا دیوانہ ہے، یہ قندیل اس کو دے دی جائے، لہٰذا اس کے حوالے کر دو تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم تم سے خوش ہو جائیں۔ ایسا ہی خواب درویش نے بھی دیکھا۔ جناب سید کونین کہہ رہی ہیں کہ سید مرتضیٰ تمہیں وہ قندیل دیں گے جس کی تمہیں خواہش ہے، تم اس قندیل کو لے لو۔ سید مرتضیٰ خواب سے بیدار ہوئے اور اس قندیل کو درویش کے حوالے کیا، لیکن درویش نے کہا میں آپ سے ناراض ہوں، میں نے بھی عالم رویہ میں سید عالمین کو دیکھا، اس قندیل کے ساتھ اگر آپ مجھے کچھ رقم دے دیں تو میری ناراضگی دور ہو جائے گی۔ قندیل کے ساتھ آپ نے کچھ رقم بھی دی، جس کو پا کر درویش مسرور ہو گیا۔ گوہر یگانہ کے مؤلف جناب مہر جالسی لکھتے ہیں، علم و ادب و فقہ و اصول و تفسیر و تمام مواقف اور مخالف ہر ایک آپ کی بزرگی، شرف و قابلیت کا معترف تھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں آپ کی مدح کی ہے اور آپ سے اقبال نقل کیے ہیں۔ ابن خلقان لکھتا ہے کہ آپ علم کلام، شعر و ادب میں امام مانے جاتے ہیں، آپ سید رضی جامع نہج البلاغہ کے بڑے بھائی تھے۔ شیخ آزاد الدین احمد بن مقبل کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ سید مرتضیٰ عربوں سے زیادہ عربی کے عالم تھے تو گناہگار نہ ہوگا۔ شیخ طوسی جب بھی سید مرتضیٰ کا نام لیتے تو صلوات اللہ علیہ ضرور کہتے اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے کہ سید مرتضیٰ بر صلوات کیوں نہ بھیجی جائے۔ آپ نے اپنی وفات کے بعد 80,000 کتابیں چھوڑی جو آپ کی تصنیف تھیں یا پھر آپ نے ان کا مطالعہ کر چکے تھے۔ ایک کتاب آپ کی تصنیف ہے جس کا نام تمانین یعنی 80 ہے۔ اس طرح ہر چیز جو آپ نے چھوڑی ہے اس کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے۔ عمر بھی آپ کی 80 سال اور چند ماہ تھی، اس لیے آپ کا ایک لقب سمانینی بھی ہے۔ حکومت نے اتنے محترم تھے کہ منصب قضا اور امارات حج و حرمین پر پورے 28 سال فائز رہے۔ آپ کی وفات بغداد میں 81 سال کی عمر میں ہوئی، اس حساب سے آپ کا سن وفات سن 436 ہجری قرار پاتا ہے، لیکن آپ کی تاریخ وفات میں مہینوں اور سال کا اختلاف موجود ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کا انتقال 5 محرم کو ہوا اور کچھ 22 ربیع الاول کہتے ہیں۔ شیخ نجاشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب ابو الائی محمد بن حسن جعفری جناب صالح بن ابو العزیز نے آپ کی میت کو غسل دیا۔ شیعہ و سنی دونوں فرقوں کے علماء نے آپ کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ 34 صدی ہجری میں شیعہ مکتب فکر میں ایک نئی روح پھونکنے کے ذمہ دار ہیں۔ روضہ کاظمین کے پاس سونپے گئے، پھر آپ کا جسد مبارک کربلا محلہ لے آ کر دفن کیا گیا۔ آپ کی حزب ذیل کتابیں بہت مشہور ہیں، شافی بحث امامت میں، ذخیرہ جمل العلم والعمل ذریعہ کتاب اللطیف الخیال، کتاب الشعب والشباب۔ آپ کا ایک عظیم دیوان بھی ہے جس میں 20,000 سے زیادہ اشعار موجود ہیں۔